वकाल उत्तखद रहमान वलदा, और वो कहते हैं रहमान ने तो बेटा बना लिया, रहमान का तो एक बेटा है। अब वलदा का मतलब बेटा भी हो गया और वलद का मतलब औलाद भी होता है, और औलाद मतलब मुशरिकीन ने मक्का कहते थे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां, ईसाई कहते मसीह अल्लाह का बेटा, यहूदियों में एक सेक्ट ऐसा है जो कहता उजैर अल्लाह का बेटा है। तो वो कहते हैं सबकी नफी कर दी। देखे यहाँ पे वकालत खजर रहमान वाला था, वो कहते हैं रहमान ने एक बेटा बना लिया। अब यहाँ पे भी देखें सुभान अल्लाह रहमान कह के ना ये बात बताई गई, हालांकि ये कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। लकद जी तुम शई अन इद्दा, तुम लेकर आए हो ऐसी बात जो हॉरेबल बात है, इतनी सख्त, जैसे कहते हैं नामुनासिब बात है, इतनी सख्त बुरी बात है। और तब भी क्योंकि यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम आया ना रहमान, तो इसकी सिग्निफिकेंस देखें कि वो रहमान है तो छोड़े हुए है, वरना अगर उसका रहम ना होता ना तो जितनी भयानक बात इन्होंने की है इनको तबाह करके रख देता हो। इसलिए कि ये देखें अभी मैंने आपको शुरू में हदीसे कुदसी सुनाई है ना कि ये अल्लाह को गाली देना है कि कहे कोई कि अलखुदा का बेटा है, ये गाली देना है। ये तो हमें ये बातें बड़ी नहीं लगती, तो हम कहते हैं अच्छा ये क्यों जहन्नुम में जाएगा, जो कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा चैरिटी वर्क करते हैं, बहुत लोगों की खिदमत करते हैं, बड़े अस्पताल बनाए, बड़े यतीम खाने बनाए, ये क्यों जहन्नुम में जाएंगे, जबकि ये इतनी बुरी बात है। फरमाया इद्दा, इतनी भयानक बात है, हमें भयानक लगती नहीं। इसीलिए तो हम वो जब ईसा अलैहि सलाम की बर्थडे मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, तो हम बहुत खुशी से उनको मुबारकबाद भी देते हैं, मैं अपने घर में भी सेंटा बन के बैठ जाते हैं और गिफ्ट लेते हैं, और क्रिसमस ट्री भी खड़ा करने से क्या फर्क पड़ जाता है, ईसा अलैहि सलाम की हम भी बर्थडे मनाएं, ईसा अलैहि सलाम की नहीं मना रहे, वो खुदा के बेटे की, के खुदा का आज बेटा पैदा हुआ। और शर्मनाक बात है ये कि मुसलमान जिनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि लकद जी तुम शई अन इद्दा, तुम इतनी भयानक बात लेकर आए हो, वो जाके उनके साथ बैठ के और वो भी मना रहे हैं, उनको ये बात खौफनाक लगती ही नहीं, लेकिन ये इतनी खौफनाक बात है, इससे अंदाजा लगा दें आप इस आयत को देखेंगे कि कितनी बड़ी बात है। तकैदु समावातु यतफत्तरन मिन्हु, ये ऐसी बात है कि इस बात से करीब है कि आसमान फट पड़े, आसमानों के ऊपर ये बात इतनी भारी है, यानी ये बात अल्लाह की मखलूक भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए कि अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है ना, इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शऊर जरूर मौजूद है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही, जैसे हमें तो लगता है नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये, तो जाहिर है इनमें क्या शऊर होगा, लेकिन ठीक है इंसानों जितना नहीं है, इंसानों जितनी अकल समझ नहीं है, ऐसी अकल समझ को क्या करना जो उसके बाद अकल होके भी शिर्क करे, लेकिन इनके अंदर फिर भी थोड़ा शऊर है। ठीक है, इसीलिए इब्ने अब्बास ने फरमाया जिन्नों और इंसानों के अलावा तमाम मखलूकात अल्लाह तला के साथ शिर्क से बहुत डरती हैं, और उनको ये खतरा है कि वो रेजा रेजा हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात है कि वो कांप जाती है, उसको लगता है आसमान को लगता है कि मैं फट ही जाऊंगा। अस्तग़फिरुल्लाह, वतनशक्कुल अर्द, और जमीन का ये हाल है कि शक हो जाए और सारों को अंदर ले जाए, वो कांप जाती है। यानी इनके ऊपर भी ना इन चीजों का असर होता है, इसका मतलब है कि जो काम हो रहे हैं ना जमीन के ऊपर, आता है ना कि समंदर कहते हैं या अल्लाह हमें तू इजाजत दे तो हमें इनके ऊपर चढ़ दौड़े, ऐसे ऐसे गुनाह जब इंसान करता है तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं मैं इनको मोहलत दूंगा, तो आसमान भी करीब है कि फट जाए। और देखिए आपके आसमान को जो हम क्या सोचते हैं कि मजबूत चीज है, वो भी इतनी हैबत में आ जाता है, इस कदर उसके ऊपर असर होता है, और जमीन जो इतनी सख्त चीज है वो भी कहती है कि मैं फट जाऊंगी, और मेरे ऊपर नहीं इतनी भारी बात है उसके ऊपर कि मैं इंसानों को अंदर ले जाऊं। वो आसमान एक महफूज छत ना रहे और जमीन कोई, वो अल्लाह ताला ने फरमाया ना आसमान को एक महफूज छत बनाया, जमीन को तुम्हारे लिए हमवार बनाया, पहाड़ों को तुम्हारे लिए गाड़ दिया, तो वो अपनी हिफाजत भी खींच ले और जमीन जिसको तुम आराम से चलते फिरते हो ये भी महफूज ना रहे, फटती पड़े और इंसानों को अंदर ले जाती रहे। और पहाड़ों का क्या हाल है, तखिरुल जिबालु हद्दा, और गिर पड़े पहाड़ रेजा रेजा हो गए। कितनी सोचे इंसान है, इतनी सी मखलूक है, और कैसे वो शिर्क करके और फिर अकड़ता फिरता है। और माशाल्लाह जो मुसलमान भी, उनको शिर्क का कुछ पता ही नहीं, उससे उनको वो फर्क ही नहीं पड़ता, वो भी कहते हैं कि नहीं ठीक है कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन आसमानों जमीन और पहाड़ जैसी सख्त मखलूक की एग्जाम्पल दे के बताया गया कि उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है, बर्दाश्त से उनसे बाहर वो कांप जाती है। तो क्या पहाड़ों के अंदर भी कोई हिस्सा है? इसका मतलब है कि उनके अंदर भी जी हाँ हिस है, अल्लाह की अजमत का एहसास है और उनको ये शऊर है कि ये कितनी बुरी बात है, जमीन गुस्से में फट जाए और पहाड़ पाश पाश हो जाए। देखिए ना हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से पूछता है कि आज कोई ऐसा भी तेरे पर चढ़ा है जिसने अल्लाह का जिक्र किया? तो वो खुशी से झूम झूम के जवाब देता है, हाँ मेरे ऊपर ऐसा आया है। बस पहाड़ भी बातिल बात को, झूठ बात को और भली बात को सुनते हैं, कलाम नहीं कर सकते लेकिन सुनते हैं। फिर उन्होंने यही इसी आयत की तिलावत फरमाई, देख लो इनको भी इतना शऊर है। इसीलिए रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने जब जमीन को और इसके दरख्तों को पैदा किया था तो हर दरख्त इब्ने आदम को फल फूल और नफा देता था, लेकिन जब जमीन पे रहने वालों ने अल्लाह के लिए औलाद का लफ्ज बोला तो जमीन हिल गई और दरख्तों में कांटे पड़ गए। काब कहते हैं मलाइका गजबनाक हो गए और जहन्नुम जोरों शोर से भड़क उठी। इसीलिए तो जहन्नुम कहेगी ना जिस वक्त उसको लाया जाएगा, वो क्यों गुस्से में फट रही होगी कि इन्होंने रहमान की नाफरमानी की, इन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। कि हर एक चीज के अंदर इसमें इतनी, वो अपने मालिक को पहचानते हैं ना, वो उन इंसानों से बेहतर है जो इंसान अक्ल और शऊर रखते हुए भी अपने मालिक का इनकार कर, उनकी नाफरमानी उसकी नाफरमानी कर। इसी तरह आप देखिए, मैंने आपको ईसा अलैहिस्सलाम का बताया था सूरह कहफ के अंदर कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे और उसके बाद फिर सब मुसलमान ईमान वाले ही हो जाएंगे दुनिया के अंदर, तो एक एक अनार पूरा पूरा कबीला खाएगा, एक एक गाय का दूध कितने 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 100 लोग पिएंगे और इतनी सब बरकतें होंगी, हर तरफ बरकतें होंगी। वो क्यों होगा? दुनिया में गुनाह नहीं होगा, ना शिरक होगा ना कोई गुनाह होगा, तो बरकतें ही बरकतें। ये जो बरकतें उठ जाती है ना, वो इसलिए हमारे गुनाहों की वजह से, शिर्क की वजह से, और हमारे जितने भी गुनाह हैं, अल्लाह की जितनी नाफरमानियां इस जमीन पे हो रही हैं, जितना जुल्म हो रहा है, जितनी ऐसी बातें हो रही हैं, उन सब से बरकत उठ जाती है। इसीलिए आप देखें कहीं भी बरकत नहीं रही, बहुत कुछ भी है लेकिन बरकत उठ गई। अल्लाहु अकबर। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों को ईजा देने वाली बातों पर अल्लाह ताला से ज्यादा सब्र करने वाला कोई नहीं। लोग इसके साथ शरीक ठहराते हैं, उसकी औलाद मुकर करते हैं और वो इन्हें आफियत देता है, रोजियां पहुंचाता है, इनके ऊपर से मुश्किलों को टालता है। बस उनकी इस बात से कि अल्लाह की औलाद है, जमीन और आसमान और पहाड़ तक तंग है और अल्लाह की अजमत और शान के लायक नहीं कि इसके यहां औलाद हो, नहीं इस बातों से ये चीजें भी तंग हैं, उनको भी गरां गुजरती हैं, तो फिर क्यों नहीं फट जाता आसमान, क्यों नहीं फट के रेजा रेजा होता जाता और उसके ऊपर से सारे सितारे नीचे गिर जाते और जमीन भी फट जाती है और सारे इंसान चले जाते और पहाड़ भी रेजा? इसलिए कि अल्लाह ताला ने इनको इजाजत नहीं दी। अल्लाह ताला इंसान को फिर भी मोहलत देता है, ये है रहमान, ये है रहमान, ये उसका रहम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देख रहे हैं ना बार बार, इसीलिए तो रहमान का लफ्ज आ रहा है, किस बात से? फिर दोबारा इस बात को दोहराया गया कि किस बात से ये फट पड़े और किस बात से ये रेजा रेजा हो जाए पहाड़। अंदाउ लिर रहमानी वलदा, कि उन्होंने रहमान के लिए दावा किया है औलाद का, रहमान के लिए कहते हैं औलाद, उसके साथ मंसूब करते हैं औलाद को, इस बात की वजह से फट जाए। अस्तग़फिरुल्लाह। तो ये छोटी बात नहीं है, हमेशा याद रखें जब आप शिर्क करते हुए किसी को देखें तो ये याद रखिए कि ये छोटी सी चीज नहीं कर रहा कोई, ये अल्लाह और रहमान को गाली दे रहा है, अगर आपको और कुछ भी नहीं याद रहता। और इस आयत को तो हाईलाइट कर लें आप, बहुत इस आयत की आप बहुत कुछ आपको याद रहेगा, और बहुत जगह पे आप इसको सुनेंगे, आयत नंबर 90 को, कि ये कितनी बड़ी बात है। अगर बाकी चीजें इससे इतना असर लेती हैं और उनके ऊपर इतनी भारी है, तो इंसान के ऊपर भारी नहीं होनी चाहिए जो कलमा पढ़ता है एक रब का, जो कहता ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन अगर उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो इस चीज से खुश होता है और इन चीजों को देख के बहुत मुतमईन रहता है, और उसको जरा सी भी उसके चेहरे पे उसके माथे पे तेवरी भी नहीं चढ़ती, बल्कि वो कहता है इनको भी जन्नत में जाना चाहिए जो भी शिर्क करता हो, तो फिर उसके ईमान का हाल देख ले। और कितना उसको पता है कुरान का, ये भी समझ आता है, वामा यंबगील रहमान यत्तखिज़ वलदा, और नहीं है लायक रहमान के, उसको ये भी नहीं देता, उसके लायक ही नहीं है कि वो औलाद ठहराए। और ये हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके, क्यों नहीं उसको औलाद की हाजत, क्योंकि औलाद होना इंसान की एहतियाज है, उसकी वो मोहताज होता है औलाद का। इसलिए तो जिनकी औलाद नहीं है वो कितनी दुआएं करते हैं, और अल्लाह ताला तमाम बे औलादों को नेक और साले जिंदगी वाली औलाद अता फरमाए। ये इंसान की एक मतलब मोहताजी है ना, उसको उसकी जरूरत है ये, और अल्लाह ताला जरूरत से पाक है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं, वो गनी है, वो बेनियाज है, वो असमद है, फिर उसके लिए औलाद ठहराना। ना उसको बुढ़ापा है, ना उसको अपनी विरासत के लिए किसी की जरूरत है, ना अपने काम चलाने के लिए जरूरत है, ना किसी की मशवरे की जरूरत है, ना उसकी ताकत में कोई कमी होनी है कि उसको जरूरत हो औलाद की, फिर क्यों ठहराए वो औलाद। ना उसको बुढ़ापा है इंसानों की तरह, तो क्यों ठहराए, ना उसको कंपनी चाहिए, वो अकेला ही है, आहद है। तो इंसानों के साथ ये कमजोरियां हैं, इसीलिए उनको औलाद चाहिए। ना उसको अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है, क्योंकि वो हय और कयूम है, उसको मौत नहीं। इंसान अपने बराबर ही लाके खुदा को भी खड़ा कर देता है। वो अच्छा, इन कुल्लु मन फिस समावाति वल अर्दी इल्ला आतिर रहमाने अब्दा, कोई नहीं आसमानों और जमीन में, इससे तो नफी कर दी ना कि कोई इसे बाहर रह ही नहीं गया, आसमानों और जमीन में यानी जो कोई भी है, मन जो कोई भी है, वो रहमान के सामने बंदा बन के आएगा, बंदा बन के आएगा। यानी मन का वो ना जिल हूल को कहते हैं, जिनके अंदर कुछ समझ सेंस हो, तो वो कैसे आएंगे, अकड़े हुए नहीं आएंगे, सरदार बन के नहीं आएंगे, गुलाम बन के आएंगे, चाहे वो फिरौन ही क्यों ना हो। जब वो रहमान के सामने पेश होगा, सबकी अकड़ खत्म हो जानी है, सब बादशाहों की बादशाहतें खत्म हो जाएंगी, अल्लाह के अब्द बन के आएंगे, और तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अब्द बनने में। तब ये सारी शोखियां और सारी बड़ी बड़ी बातें और सारे तकबर और सारी अकड़, ये सब खत्म हो जानी है, झुके हुए आएंगे जो आसमानों और जमीन। फरिश्ते तो पहले ही झुके हुए, जिन्नो इंस भी झुक जाएंगे, बड़े बड़े जिन्नात शयातीन, शैतान को भी आग का लिबास जाएगा सबसे पहले, वो भी ऐसे आएगा कि झुका हुआ। तो सब अल्लाह ताला के सामने उसके अब्द हैं, गुलाम है, तो गुलाम तो बच्चा नहीं हो सकता। और असमावात और अर्द में फरिश्ते भी आ गए, ईसा अलैहि सलाम भी आ गए, उजैर अलैहि सलाम भी आ गए, सारे पैगंबर आ गए ना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए। तो मुझे बताए ना फिर ये कहाँ से हम कर लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम देना कि अल्लाह ताला के साथ ही बिठा देना, जैसे इतना ऊंचा मकाम दे देना कि अल्लाह ताला के बराबर कर देना, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है आसमानों और जमीन में जो कोई भी है, मगर वो इस तरह आएगा अल्लाह के आगे कि उसका अब्द होगा, उसका गुलाम बन के आएगा। और अब्दियत के अंदर क्या आती है, आजजी। उस अब्द के लफ्ज में, गुलाम के लफ्ज में ही आपके दिमाग में एकदम क्या आता है, आजजी, नीचा होना, ठीक है, कमजोरी, ये सब चीजें आती है ना, वो अल्लाह के आगे ऐसे कमजोर, आजिज, बेबस, बिल्कुल ऐसे छोटे होके आएंगे, बहुत छोटे होके। अल्लाह अकबर, काश इंसान दुनिया में अब्द बन के रह ले, क्योंकि वहां तो अब्द बन के जाना ही होगा। असल बात है, यहां पे कौन अब्द बन के चलता है, यहां पे कौन अल्लाह के आगे झुक के चलता है, या यहां पे अपनी मर्जियां चलाता है। लकद असाहुम वअद्दहुम अद्दा, हमने घेर रखा है और गिन रखा है, गिनना। अल्लाह अकबर, सारी इंसानियत, जितने भी लोग हैं, जो भी आने वाले हैं, सबका हर हर एक्शन गिन रखा है। और नॉट ओनली एक्शन, इवन सांस तक भी गिनी हुई है, सांस भी। इसीलिए वो किसी शायर ने कहा ना कि ये जिंदगी जो है ये गिनी हुई सांसों का मजमूआ है। सांस ही है जो गिनी हुई है। कि मसलन कहते हैं कि एक इंसान शायद एक जगह पे पढ़ा कि 24,000 सांस लेता है एक दिन और रात में। तो उस शायर ने कहा कि इंसान की जिंदगी क्या है, सांसें ही है ना कुछ। जब एक सांस चला जाता है तो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। खत्म हो जाता है कि बढ़ जाता है। हम तो बड़ी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे मनाओ भाई, अब इतने साल के हो गए, एक साल खत्म हो गया कि बढ़ गया। हाँ, कितनी नादानी है ना। तो एक सांस चला जाता है तो जिंदगी का एक हिस्सा खत्म हो जाता है। हाँ, फिर किसी ने कहा कि कैसे कोई नौजवान इस दुनिया की लज्जतों का मजा ले सकता है, जबकि उसका हर लफ्ज जो वो बोलता है और हर सांस जो वो लेता है वो गिना हुआ है। एक भी ज्यादा सांस नहीं उसने लेनी, एक सांस भी ज्यादा नहीं ले सकेगा। अल्लाह हु अकबर। तो अल्लाह ताला ने तो घेर भी रखा है और गिन भी रखा है। कुल्लुहुम आती ही यौमल कियामती फरदा, सारे के सारे आने वाले हो कयामत के दिन, अकेले 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 ही जाना है, अकेले ही आए थे। कहाँ गए वो जत्थे, कहाँ गया वो पैसा, कहाँ गई वो दौलत, कहाँ गए वो बैंक बैलेंस, कहाँ गई वो जायदादें, कहाँ गए वो जेवर, कहाँ गए वो मेरे कपड़े। फर्दा फर्द, ये चीज ना इंसान को हिला के रख देती, बड़ी सख्त आए थे। इंडिविजुअली आना होगा। देखिए, अच्छा इंसान अगर तकलीफ में होता है ना, क्यों आप देखने जाते हैं किसी बीमार को, या जब किसी के घर कोई फौतगी हो जाती है क्यों देखने जाते हैं? क्योंकि देखिए, एक इंसान का जब गम होता है ना तो उसको तसल्ली की जरूरत होती है, हर इंसान को। वो उसको चाहे पता भी है कि भाई मेरा कोई फौत हो गया, वापस थोड़ी उसने आ जाना है इनके तसल्ली देने से, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि भाई जाओ जाके उसको तसल्ली दो, उससे उसका दिल बंध जाता है। ठीक है, बीमार होता है, उसे आप चंद अच्छी बातें करते हैं, उसका दिल बहल जाता है। वो क्या दिन होगा जब अल्लाह के आगे अकेले ही खड़े होना है, इतना मजमा है तब भी अकेला है, कि कोई ये भी नहीं करता कि आके दो तसल्ली के बोल ही बोल जाए कि कोई बात नहीं, ठीक रहोगे तुम। नहीं, अकेला अकेला होना ही ना इंसान को डिप्रेस कर देता है। वो इस दुनिया में भी अकेला नहीं रहना चाहता, इसलिए इंसान अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करता है, कभी औलाद को बुलाता है, कभी रिश्तेदारों को बताता है, कभी दोस्तों में बैठता है, कभी दावतें करता है। अकेला उसपन उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कितना उसका दर्द बढ़ जाएगा कि जब वो देखेगा मैं अकेला रह गया। पता चलता है ना हमें हदीस से भी कि इंसान को अकेला ही हाजिर होना होगा। इस हाल में उसके दाएं तरफ देखेगा तो तब भी अमल, बाएं तरफ देखेगा तो तब भी अमल, सामने देखेगा तो जहन्नुम नजर आ रही होगी, आग नजर आ रही होगी, और उसके और अल्लाह ताला के दरमियान कोई तर्जुमान नहीं होगा, कि कोई वकील ही साथ ले आया कि नहीं, मेरी मेरे तो इतनी अच्छी तरह बात नहीं कर सकती, तो आप मेरी जरा वकालत कर दें, तर्जुमानी कर दें। नहीं, कोई भी नहीं होगा। इसीलिए फिर आपसे सलम ने फरमाया था ना कि फिर सदका करो, चाहे एक तमर ही, एक खजूरी दे दो, खुद को अपने आप को आग से बचाओ। तो पहले तो देखें, आप देखें मुत्तकीन को भी ग्रुप्स में लाया जा रहा है, जहन्नुम वालों को भी सीखा का भी लफ्ज आता है सूरह जुमर में, तो यहाँ पे भी हांक के लाया जा रहा है, वो बताया गया। लेकिन जब अल्लाह ताला के सामने पहुंचने का वक्त होगा ना, उस वक्त बिल्कुल ही अकेला हो जाना इंसान ने, उस वक्त नहीं किसी ने साथ होना। और ये सबकी बात है, सारी इंसानियत के लिए है ये, सबको अल्लाह के सामने अब्द बन के आना है। सबकी सांसें गिनी हुई, सबका एक एक एक्शन, एक एक बोल गिना हुआ, हम तो अपने बोल खुद भी नहीं जानते, यकीन करें कल तक की या सुबह तक की भी नहीं बात याद होती। एक एक घूंट जो लिया, एक एक निवाला जो खाया, अल्लाह वो अकबर, एक एक चीज गिनी भी। मैं अमल मिसकाला जर्रा तिन खैर यारा, मैं अमल मिसकाला जर्रा तिन शर यारा, खैर का भी जर्रा भी गिना हुआ है और शर का भी जर्रा भी देख लूंगी। सब ही गिन गिन के चीजें रखी और फिर अकेले हैं बस। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला तो हम पे रहम फरमाना उस दिन, तो अकेला है और अल्लाह तेरे आगे हमने अकेले पेश होना। और आप देख लें दुनिया से भी तो जाते हुए यही हाल होता है, चाहे जनाजे में हजारों लोग शरीक हो जाएं, हर जाने वाले को अकेले ही जाना पड़ता। अब फिर अल्लाह ने अकेले ही हिसाब किताब करना है कि जिस वक्त बुलाया जाएगा फलां बिन फलां आ जाओ, इतने मजमे में खड़े हुए जिसका नाम लिया जाएगा उसने अकेले ही आगे हाजिर होना है। अपने साथ बच्चों को नहीं ला सकता, अपना छोटे बच्चे को भी कभी साथ इसलिए ले लेते ऐसी तसल्ली के लिए, माए हम लोग ले लेती हैं ऐसे, अलग छोटे बच्चे ने हमें क्या क्या हमें सपोर्ट करना है, लेकिन बस चलो मेरे साथ कोई हो जाए, हम कहते नहीं मैं अकेली क्या जाऊं, चलो मेरे साथ कोई हो जाए। इन अल्लाह के सामने तो बिल्कुल ही अकेले खड़े होना होगा। फिर जो ईमान लाए और सारे अमल किए, क्या आप सोचते हैं इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलू सालिहात, अभी तक आपने बहुत जगह कुरान में पढ़ा, आज एक यूनिक बात भी पढ़ रहे, बहुत ही प्यारी आयत। ये देखिए ये सारी आयतें बड़ी हैवी हैं, लेकिन जो ईमान लाए और अमले साले किया तो उनके लिए यहाँ पे जो चीज बताई गई ना वो डिफरेंट है, वरना पहले हम लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फिया, आप यू आर एक्सपेक्टिंग दिस कि आगे ये आएगा राइट, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, लेकिन आज एक और चीज है जो रहमान ने बताई और इस आयत में भी रहमान है। तकरीबन 16 जगह पे इस आयत के अंदर 16 जगह ही बनती है, 16 जगह पे इस आयत में रहमान अल्लाह ताला का ये नाम आया, और इतना किसी भी नहीं सूरत में कुरान की आया इतनी दफा ये नाम। तो जो ईमान लाके सौले अमल करेंगे, आप क्या सोचते हैं अल्लाह ताला क्या देगा उनको? जन्नत तो देगा ही, एक और चीज भी देगा, सयजअलु लहुमुर्रहमान, पैदा कर देगा, इंस्टिल कर देगा उनके लिए रहमान वुद्दा, मोहब्बत। किसके दिल में मोहब्बत? बहुत प्यारी आयत है ये, किसके दिल में मोहब्बत? अल्लाह ताला खुद भी उससे मोहब्बत करने लगेगा, वो रहमान है ना इसलिए, और अल्लाह ताला लोगों के दिलों में भी उसके लिए मोहब्बत डाल देगा, लोग भी उससे मोहब्बत करने लगेंगे। इसलिए कि हमें हदीस से भी पता चलता है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि बुलाता है और बुला के फरमाता है, ए जिब्राईल मैं फुलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उससे मोहब्बत करने लगते हैं, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमानों में उतरते हैं और निदा देते हैं कि अल्लाह ताला फुलां बंदे से मोहब्बत करता है, फरिश्तों तुम भी उससे मोहब्बत करो, तो सारे आसमान के फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। फिर उसकी मोहब्बत अल्लाह ताला जमीन पे उतार देता है, तो फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं, अल्लाह अकबर। और इसी तरह अल्लाह की नाराजगी भी है। अब आप सोचेंगे शायद आपके जहन में ये ख्याल आए कि अल्लाह ताला मोहब्बत डाल देता है, लेकिन ये तो वो जो लोग गाने बजाने वाले और ये है, और वो जो लोग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं और ऐसे हैं उनकी तो बहुत फैंस हैं और उन लोग बहुत उनके ऊपर मरते हैं और ऐसे हैं वैसे हैं, तो बात यह है कि ये ईमान वालों के दिल में जो मोहब्बत है उसकी बात हो रही, ईमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते। और फिर ये वो मोहब्बत है जो अनकंडीशनल है, किसी लालच में नहीं है कि मुझे ओहदा मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, या मुझे इससे कोई फायदे मिल जाए, नौकरी दिला दे कल को, मेरे ये कॉन्टेक्ट बन जाए, ये उससे नहीं, ये बेलॉस मोहब्बत है। आप इसीलिए देखते हैं ना सहाबा ने आपको आके कोई कहा हमसे मोहब्बत करें, उनको तो हमारा पता भी नहीं, यानी हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। इसी तरह मुहद्दिसीन हैं, सालेहीन हैं, स्कॉलर्स हैं, हमारे उसाज़ा इकराम होते हैं, हम उनसे मोहब्बतें करते हैं। और अक्सर होता है कि उनको तो पता भी नहीं है कि भाई कौन है मुझसे मोहब्बत करा, चाहे वो जिंदा भी हो। जो फौत हुए उनको तो वैसे ही नहीं पता, जो जिंदा है उनको भी नहीं पता होता। लेकिन वो क्या होता है, अल्लाह ताला वो मोहब्बत डाल देता है उनके लिए। लेकिन ये देखिए, हम इंसान ना सुबहान अल्लाह, मोहब्बत लेने के लिए लोगों की ना, ये मोहब्बत खरीदी नहीं जा सकती ना पैसों से। तो इंसान ना मोहब्बत लेने के लिए ना बड़ी कोशिशें करता है। इंसान कहता है कभी वो किसी तरह का काम करेगा, कभी कैसे कि बस सारों की आंखों में मैं जच जाऊं, लोगों की बस मोहब्बत मुझे मिल जाए, लोग मुझसे प्यार करने लगे, लोगों की आंखों का तारा बन जाऊं, ऐसे हो जाए। मगर ये मोहब्बत अल्लाह डालता है जिसके लिए चाहे, क्योंकि दिल अल्लाह के हाथ में होते हैं। ये हमारे करने से नहीं होते, बल्कि अगर इंसान करेगा ऐसा कि मैं इनकी मोहब्बत पालू, मैं इनकी जितनी मर्जी कोशिश करता रहे वो नहीं मोहब्बत पा सके। जैसे वो ना हजरत हसन बसरी फरमाते ना, एक आदमी ने इरादा किया कि अल्लाह की इबादत इस तरह करूं कि लोग मेरी नेकी की शोहरत पा जाए, सारे लोग मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। तो वो अब वो इबादत में लग गया, इतनी इबादत कर रहा है, सबसे पहले मस्जिद आ रहा है, सबके बाद मस्जिद से जा रहा है। इस तरह 7 महीने गुजर गए, लेकिन जब भी वो देखता था तो लोग उसके बारे में क्या बातें कर रहे होते थे, बड़ा रियाकार है, बड़ा दिखावा करता है। तो उसने ये हालत देखी तो वो तो मायूस हो गया लोगों से। उसने कहा कि मैं क्या इनके पीछे ये कर रहा हूँ, क्यों ना मैं अल्लाह को खुश करने के लिए कोई अमल करूं। तो फिर उसने अल्लाह ताला को खुश करने के लिए खालिस नीयत के साथ अमल करना शुरू किया, नेकियां शुरू की। फिर क्या हुआ, थोड़े दिनों में हर बंदे की जुबान पे, क्योंकि ये तो अल्लाह ने डालना है ना, हर बंदे की जुबान पे क्या था, अल्लाह ताला फलां पे रहम पर रहे, वो वाकई बड़ा अल्लाह वाला बन गया। तो ये हजरत हसन बसरी ने फिर इसी आयत की तिलावत फरमाई, सुभान अल्लाह। इसलिए ये नहीं कि हम किसी के दिल में पैदा कर सकते, तो हम ऐसे काम कर करके दिखाएं ताकि लोग हमसे बड़ी मोहब्बत करने लगे, ऐसे नहीं होगा। लोग पसंद करने लगे, लोग मेरी तारीफें करने लगे, लोगों की नजरों में मैं जज जाऊं, ये नहीं। बल्कि ईमान और साले अमल इसमें लग जाए, इसमें अपने आप को खपा दे, आप देखेंगे लोगों के दिलों में आपके लिए खुद ब खुद अल्लाह जगह बना देगा। अल्लाह ताला ऐसे करता है, उसकी हुकूमत दिलों पर है। तो आप फिक्र इस बात की ना करें कि लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे, तारीफें की थी उसने मेरी, लोग मुझे पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरी फैन फॉलोइंग कितनी है, कितने लोग हैं जो मुझे आजकल इस सोशल मीडिया पे, इस पेज पे मुझे कितने फॉलो कर रहे हैं, इसकी आप ना फिक्र करें। बस ईमान और सारे अमल ये करने लगेंगे तो देखिएगा फिर कैसे अल्लाह उन आपको लोगों के लिए प्यारा बना देता है। और फिर ऐसे ही लोग होते हैं कि फिर उनके जनाजों में भी लोग शिरकत करते हैं। तो देखें जिसके जनाजे में 40 ईमान वाले आ जाए और उसके लिए दुआ करें, जनाजे की नमाज पढ़े, उसके लिए दुआ करें, 40 ईमान वाले, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता। 40 लोग थे ईमान वाले जो उसे मोहब्बत करते थे ना, इस मोहब्बत का तो फायदा दुनिया में भी हुआ, आखरत में भी। तो ये नुस्खा है मोहब्बत पाने का, हमने उल्टा रास्ता लिया हुआ मोहब्बत पाने का। हम कहते हैं कि पता नहीं, मैं लोगों को खुश करने के लिए इनकी हाँ में हाँ मिलाऊंगी तो फिर पता नहीं मुझे इनकी मोहब्बत मिल जाएगी, जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही करने लगो, इसको भी खुश कर दिया, हाँ हाँ तुम भी सही कह रही हो, उसको भी गए उसके पास भी, हाँ तुम भी, पता नहीं इस तरह ये मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे। ये नहीं, इस तरह से नहीं मोहब्बत मिलेगी। आप नेकियों पे जुट जाए, ईमान इखलास, तो ये अल्लाह की रहमत है, जो मोहब्बत है ना ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह ही डाल सकता है। आप देख ले ये जो फिर दूसरे लोगों की मोहब्बत है वो अनकंडीशनल मोहब्बत नहीं, कितने लोग हैं जो उनके बाद उनको याद करते हैं और उनके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, उनमें कोई ना कोई लालच होगा। फिर वो खुद भी वो लोग वैसे ही होंगे जो उनसे मोहब्बत करने वाले, ऐसे लोगों से जो बुरे होते हैं, क्या वो उनके जनाजों पे जाएंगे। और देखें आपके अब्दुल्ला बिन मुबारक का जब जनाजा पढ़ा गया, वो इतना बड़ा जनाजा था, इतने लोग आए उस जनाजे में कि उस मौके पर लोगों ने कहा कि ये है वो मोहब्बत जो अल्लाह दिलों में डाल देता है। तो ये अल्लाह ताला की खास इनायत होती है और अल्लाह ताला की तरफ से एक समझ लें एक रिवॉर्ड है इस दुनिया में जो अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और जिसको खालिस मोहब्बत मिल जाए किसी की, फिर इससे ज्यादा बड़ी और क्या बात हो सकती है। मोहब्बत, इंसान मोहब्बत होती है तो इज्जत भी होती है। वरना आप देखें बड़े बड़े सियासतदान होते हैं, बहुत उनके पीछे लोग आते हैं, बड़े उनके जलसे होते हैं, बहुत लोग उनमें शिरकत करते हैं, लेकिन उसके बाद क्या गालियां दे रहे होते हैं उनको। तो ये है जो अल्लाह ताला, आप आपको पता चला कि जन्नत तो ईमान और साले अमल की बेस पे है ही है, लेकिन मोहब्बत भी मिल जाएगी इंसानों में। उससे ज्यादा क्या बड़ी बात हो सकती है कि अल्लाह मोहब्बत करने लगे, फरिश्ते मोहब्बत करने लगे, और इंसानों में भी मोहब्बत आ जाए उनके दिलों में। फइन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका, तो बेशक ए नबी हमने इसको, किसको, कुरान को। अभी पीछे कुरान की हालांकि बात नहीं हुई, लेकिन ये अंडरस्टूड माना है यहाँ पे कि इसका माना कुरान है। हमने इसको आपकी जुबान के ऊपर आसान कर दिया, एक तो अरबी जुबान में था, दूसरा इसको आसान बना दिया इस कलाम को। ली तुबशिर बिल मुत्तकीन, ताकि आप क्या करें, बशारत दे मुत्तकी लोगों को। देखिए कितनी प्यारी ये बशारत है, जो मुत्तकी होगा वो ये सुन के कितना खुश हो जाएगा कि अल्लाह ताला उसके लिए वुद पैदा कर देगा। सहाबा ने कितनी मुश्किल जिंदगियां गुजारी, कितने मसाइब सहे, लेकिन अल्लाह ने कैसी वुद पैदा कर दी। वो अलवदूद है, और उसने मोहब्बत डाल दी, रहती दुनिया तक जितने ईमान वाले आएंगे उनसे मोहब्बत करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी इसी तरह। वतुंजिरा बिही कौम लुद्दा, और ताकि आप उनको वॉर्न कर दें जो झगड़ालू कौम है, जो बस बहसे करते हैं, उनका काम बहसे करना और कुछ नहीं है, बस कोई बात निकाल लेनी उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट शुरू कर देना, उनको इंतजार कर दें इस कुरान के जरिए। तो वाकई इस कुरान के जरिए ही इंसान को दावत का काम करना चाहिए। इस कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया, सहूलत वाला बनाया, फैसिलिटेट कर सकते हैं आप इसको फैसिलिटेट कर दिया। तो अब इसके बाद इंसान ये कहे नहीं, जो बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, ये नहीं कहना चाहिए। अल्लाह ताला ने आसान किया। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान के जरिए तबशीर भी की और इसी कुरान के जरिए इंजार भी किया। लिहाजा इसी कुरान के जरिए हमने दावत का काम करना। वकम अहलकना कबलहुम मिन करनिन, और कितनी ही हलाक हो गई इनसे पहले कौमों में से, कितनी पता नहीं कितनी। अब जब कहा गया ना कितनी ही, तो मतलब है कि बहुत सारी। ये जो हमें पता चलता है तो चंद एक कौमों का पता चला जो कुरान में, जिनके जिक्र आ गए, या हम दुनिया में जिनके खंडरात देख लेते हैं, कहीं खुदाई हुई तो पता चला कि यहाँ पे भी कोई कौम दफन है, ये पता नहीं इसके ऊपर क्या आजाब आया, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन जगहों पे जाकर देखे कितनी खुदाइयां हुई, क्या फिर कौम लूत किधर है। तो वो तो हमने कुरान से पढ़ी, और पता नहीं कितनी कौमें हैं जो तबाह हो गई। हल तो हिस्सू मिन हम मिन आहते, क्या तुम्हें उनकी कोई महसूस भी होती है, महसूस भी करते हो उनमें से किसी एक को भी, औ तस्मा उलहम रिक्जा, या तुम सुनते हो उनमें से किसी की आहट भी। मैंने बिल्कुल, अल्लाह ताला ने कैसे खामोश कर दिया उनको, आज उनकी जरा सी भी कोई एक बंदा भी उनका उठ के आके नहीं कह रहा कि अच्छा हम यहाँ पे रहा करते थे और हम इतनी बड़ी कौम थे और हम ये थे, नहीं कोई भी नहीं। अल्लाह ताला ने कैसे उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया, खत्म कर दिया। बड़े बड़े जाबिर, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े अमीर आए जो कहते थे हमारे मुकाबले का कोई नहीं, मगर आज कहाँ गई वो आवाजें। बहुत शोर करते थे, बहुत झगड़े करते थे, बहुत बहसें होती थी, कहाँ गया वो फिरौन, कहाँ गया वो नमरूद, कहाँ गया कारून, कहाँ गया अबू जहल, कहाँ गया अबू लहब। तो ये है कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये क्या अपने आप को समझते हैं, पिछली कौमों के हालों से इबरत पकड़ो और अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश ना करो, अल्लाह के आगे झुक जाओ, उसकी ताकत को समझो, उसकी कुव्वत को समझो, बड़े ना बनो यहाँ पे, अब्द बन के चलो, रहमान के अब्द। वो तो रहम और रहम और रहम वाला ही, उसकी रहमतों के तो अंदाजे ही इंसान नहीं कर सकता, अगर इंसान अंदाजा कर सके ना तो खुद ही झुक जाए कि इतने रहमान के आगे मैं क्या सर उठाऊं, इतना रहम करने वाला रब, तो वो इतना रहम करने वाला है, उसके आगे झुक जाओ, वो अपनी रहमतों की बारिश तुम पर करेगा। अल्लाह ताला इस सूरत से हमें सबक लेने की तौफीक अता फरमाए और इसमें जो मैसेज है उसको याद रखने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नस्तगफिरुक व नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن ما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا